हरे कृष्णा। सॉरी, लास्ट थर्सडे को हम ये क्लास नहीं कर पाए कुछ कारणों से, तो पिछले मंडे को जब हमने क्लास किया था तब हमने दूसरे अध्याय में 28 श्लोक तक हमने कंप्लीट किया था, और आज हम 29वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। टेक्स्ट 29 और 29, 30, 31, 32, ऑलमोस्ट 4-5 श्लोक तक हम ट्राई करेंगे करने का, कंप्लीट करने का। तो तीसरा श्लोक, 29वां श्लोक जो है वो इस प्रकार से है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इसमें बताया जा रहा है, इस श्लोक का नाम है आश्चर्य श्लोक। इस श्लोक में बताते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम्। एनम् मतलब आत्मा। इस आत्मा को कुछ लोग आश्चर्य से देखते हैं। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य है। कुछ अन्य लोग जो हैं वो इस आत्मा को आश्चर्य से बोलते हैं, आत्मा के बारे में आश्चर्य से बताते हैं। आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति। कुछ लोग आश्चर्य से इस आत्मा के बारे में सुनते हैं। श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्। और कुछ लोग इसको सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। चार वस्तुएं बताई गई हैं। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कुछ लोग आश्चर्य से उसके बारे में बताते हैं, कुछ लोग आश्चर्य से उसके बारे में सुनते हैं, और कुछ लोग सुनने के बाद भी उसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए इस श्लोक में आश्चर्य शब्द इतना यूज हुआ है कि इसको आश्चर्य श्लोक भी बोला जाता है कई बार। तो इसी तरीके का श्लोक कुछ उपनिषद में भी आता है, कठोपनिषद में भी इस प्रकार का श्लोक है। श्रवणयापि बहुभिन्नो ललभ्य श्रण्वतोपि बहवो यम न विद्यु आश्चर्यो वक्ता कुशलोश्च लब्धा आश्चर्योस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। ये बहुत आश्चर्य है कि वही आत्मा बहुत बड़े पशु के अंदर होती है, वही आत्मा बड़े बरगद के पेड़ के अंदर होती है, और छोटे से इंच के स्थान में भी लाखों करोड़ों आत्माएं पाई जा सकती हैं। और उन हम जानते हैं कितने सारे बैक्टीरिया हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, उन बैक्टीरियाओं के अंदर भी आत्मा की उपस्थिति होती है। तो बहुत आश्चर्य होता है कि आत्मा इतनी छोटी कैसे हो सकती है कि संसार के छोटे 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 बैक्टीरिया, माइटोकांड्रिया जैसे बैक्टीरिया, उनके अंदर भी आत्मा पाई जाती है। बहुत आश्चर्य है ये। इसलिए जो लोग कम जानने वाले हैं और जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, दो प्रकार के लोग, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब अल्प अज्ञ, अल्प जानने वाले, और दुराचारी जिनका आचार अच्छा नहीं है, ऐसे लोग आत्मा के इस आश्चर्य को नहीं समझ पाते हैं। भले ही ब्रह्मा जी जैसे लोग जो संसार के सबसे बड़े ज्ञानी हैं वो भी क्यों नहीं शिक्षा दें, परंतु लोग आत्मा को इस प्रकार से नहीं समझ पाते हैं। आधुनिक युग में विशेष रूप से कई लोग होते हैं जो कि इस तरह से बताते हैं कि आत्मा नाम से कुछ नहीं होती है। हालांकि आत्मा का इन्फ्लुएंस के द्वारा बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी समझाया है, परंतु लोग नहीं समझ पाते हैं कि आत्मा भी पाई जाती है। कल्पना नहीं कर पाते हैं कि आत्मा एक तरफ इतनी छोटी है, तो इतना छोटा सा कण जो है वो पूरे संसार को कैसे मेंटेन कर सकता है। हर व्यक्ति, इतनी सारी आत्माएं हैं संसार में, पूरा सभी आत्मा एक आत्मा के कारण चलता है, वो आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है। तो कोई लॉजिक के आधार पर देखता है तो समझ नहीं पाता है। और एक और तथ्य इसमें दिया है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भौतिक भोग में डूबे रहते हैं, उनकी बुद्धि इतनी ज़्यादा मोहित हो जाती है या इतनी ज़्यादा मोटी हो जाती है कि वो आत्मज्ञान को समझने के लिए क्वालिफाइड नहीं रहते हैं, आत्मज्ञान को समझने का मौका ही नहीं मिलता उनको। जबकि ये बात सच्चाई है कि अगर कोई व्यक्ति ने सब कुछ सीख लिया परंतु आत्मज्ञान नहीं सीखा, तो जीवन के संघर्ष में उस व्यक्ति की पराजय निश्चित होती है, वो व्यक्ति कभी जीवन संघर्ष में जीत नहीं पाता है। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान समझना बहुत जरूरी है, तब भी लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। इसलिए मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करके हल ढूंढना चाहिए। हजारों लोगों में से कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं। जो अच्छे लोगों की संगति में आते हैं वो आत्मा के बारे में सुनना चाहते हैं, और वो लोग भी कई बार फिर भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि उनको इस प्रकार से लोग मिल जाते हैं जो समझाते हैं कि आत्मा और भगवान एक हैं, मतलब परमात्मा और अणु आत्मा दोनों एक हैं। इस प्रकार से अज्ञानता के कारण वो इस प्रकार से सोचते हैं। तो संसार में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को खोज पाना बहुत कठिन है जो परमात्मा को, अणु आत्मा को, उनके कार्यों को, उनके बीच में जो संबंध है, भौतिक संसार किस लिए बनाया गया है, इन सब वस्तुओं को जो सही सही जान पाता है, ऐसे व्यक्ति मिलना बहुत कम है। और इससे भी कठिन है कि जो इनको पूरी तरह से जान के भगवान की सेवा करके शुद्ध बन चुका है, शुद्ध चेतना को प्राप्त हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से मिलना और भी कठिन है। तो अगर कोई किसी भी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस ज्ञान को समझने का बहुत आसान उपाय है कि भगवान कृष्ण ने जो भगवद गीता में बताया है उसको परम प्रमाण के रूप में समझ के स्वीकार किया जाए, और शुद्ध भक्त, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी शरण को प्राप्त करके उनकी सेवा की जाए, तब हम आत्मा को समझ सकते हैं। अन्यथा आत्मा को समझना बहुत मुश्किल है। आत्मा के लिए कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जैसे डॉक्टर यान स्टीवेंसन हैं, उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं वो, कि कुछ अवस्थाओं में जब ब्रेन और हार्ट दोनों के दोनों जब डेड हो जाते हैं उसके बाद भी आत्मा की उपस्थिति होती है, चेतना की उपस्थिति होती है। कुछ कुछ ऑपरेशंस ऐसे किए जाते हैं, स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट में हम देखते हैं कि व्यक्ति के ब्रेन में कोई नर्व्स ऐसी है कि वो नर्व्स ब्लॉकेज के जैसा कार्य कर रही है, तो ब्रेन को खोल के उस नर्व्स को हटाना पड़ता है, परंतु ब्रेन को खोलना पॉसिबल नहीं है, और ब्रेन को अगर ज़्यादा देर के लिए हम ब्लड की सप्लाई रोकते हैं तो ब्रेन डेड हो जाता है, पूरे शरीर डेड हो जाता है। तो ऐसे कुछ कुछ जटिल ऑपरेशन जब होते हैं उनमें कुछ कुछ बार देखा जाता है इस प्रकार से कि व्यक्ति के पूरे शरीर को नर्व्स, मतलब क्या बोलते हैं, शून्य कर दिया है, पूरे शरीर में कोई चेतना नहीं है, नर्वस सिस्टम भी ब्रेक डाउन कर दिया है, और ब्रेन को भी कुछ देर के लिए ब्लड की सप्लाई रोकते हैं और एनेस्थीसिया भी शरीर में लगाते हैं। ऐसे केसेस, कुछ कुछ केसेस आते हैं जब व्यक्ति क्लिनिकली डेड के समान है, मृत्यु के मृत व्यक्ति के समान है क्लिनिकली अगर देखा जाए, परंतु उस केस में भी कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर चेतना पाई जाती है, ऐसी वस्तु पाई जाती है जो कि ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद वो व्यक्ति वो सारी चीज़ें अनुभव करता है जो ऑपरेशन के समय हुई थी। यद्यपि उस व्यक्ति के अंदर कोई विज्ञान की दृष्टि से देखें तो उस व्यक्ति के अंदर कुछ नहीं था, वो मरे के समान था, परंतु जब वो बाहर निकलता है तो सारी चीज़ें बताता है कि ऑपरेशन के समय क्या क्या हो रहा था। उससे ऐसे कुछ कुछ वैज्ञानिकों को पता चला, वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स को पता चला कि कई बार जब ब्रेन, दिमाग जो कि शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, और हार्ट, ये दोनों भी जब काम नहीं करते हैं उस समय भी शरीर में कोई ना कोई वस्तु होती है जो कि ब्रेन और हार्ट, दिमाग और हृदय से भी ऊपर है। तो उस लॉजिक से वो लोग आत्मा को समझ पाते हैं, परंतु अगर आत्मा के बारे में जानना है तो वैदिक शास्त्रों का सहारा लेना पड़ता है जहाँ पे आत्मा का क्लियर डिस्क्रिप्शन बताया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में आता है, देहि नित्यम अवध्योयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम् अर्हसि। देहि नित्यम अवध्योयम्, देही का मतलब होता, देह का मतलब होता है शरीर, देही का मतलब होता है शरीर के अंदर जो रहता है, शरीर का जो मालिक है। तो देही नित्यम अवध्योयम्, शरीर के अंदर जो आत्मा निवास करती है वो हमेशा नित्य है और उसको मारा नहीं जा सकता है। देहे सर्वस्य भारत, हर एक के शरीर में वो आत्मा निवास करती है और उस आत्मा को मारा नहीं जा सकता है, अबध्य, उस आत्मा का वध नहीं किया जा सकता है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम् अर्हसि, इसलिए कभी भी हे अर्जुन तुम्हें कभी भी जन्म लेने वाले या मरने वाले लोग, मरने वालों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि वास्तविकता में आत्मा का विनाश नहीं होता है, इसलिए आपको कभी भी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसका अनुवाद बताते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। इस प्रकार से तात्पर्य में बताया जा रहा है कि अर्जुन का लक्ष्य था और अर्जुन का कर्तव्य भी है कि वो धर्म के लिए जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध से अपने आप को बाहर मत निकालें। क्षत्रिय का ये कर्तव्य है, चाहे उस युद्ध में उनको अपने पितामह भीष्म और अपने गुरु द्रोण को ही क्यों ना मानना पड़े, परंतु क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का कर्तव्य है अधर्म का विनाश करना। तो भगवान कृष्ण को प्रमाण मान के अर्जुन को ये मानना चाहिए कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, और चूंकि भीष्म और द्रोण जो है वो पुण्य आत्माएं हैं तो उनका जो शरीर है उनका तो विनाश नहीं होगा और उनको अच्छी योनि प्राप्त होगी, अगली योनि जो है उसको अच्छी योनि प्राप्त होगी। इसलिए अर्जुन को कभी भी आत्मा के ज्ञान को जान के फिर उनको कभी शोक नहीं करना चाहिए युद्ध के लिए। और जब स्पेशली जब ये युद्ध भगवान कृष्ण के इच्छा से हो रहा है, भगवान कृष्ण की आज्ञा से हो रहा है, तब अर्जुन को इसको स्वीकार करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 11 जो हमने चालू किया था 11 नंबर श्लोक से इस 30 नंबर श्लोक तक भगवान का जो आत्मा का डिस्क्रिप्शन है, आत्मज्ञान वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक्चुअली भगवद गीता के हर अध्याय को कुछ कुछ सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, और उस सेक्शन में स्पेसिफिक थीम है जिस थीम को भगवान डिस्कस करते हैं। तो वो अगर जान के हम भगवद गीता पढ़ते हैं को समझ सकते हैं, भगवद गीता को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ये थीम कंप्लीट होता है जहाँ पे आत्मा का ज्ञान बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट थीम आता है, अर्जुन ने जो एक आर्ग्यूमेंट दिया था पहले अध्याय में कि मेरा धर्म जो है, अर्जुन बता रहे थे ना कि अर्थशास्त्र के आधार पे भी हमें मारना, इन लोगों को मारना ठीक नहीं है, हम अपने धर्म को क्यों भूलें, इस प्रकार से अर्जुन बता रहे थे। तो उसका उत्तर भगवान अगले 2-3 श्लोकों में देते हैं। 31 नंबर श्लोक में हम देखते हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धास्येयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान बता रहे हैं स्वधर्मम अपि चा अवेक्ष्य, अवेक्ष्य का मतलब विचार करके, स्वधर्मम अपि चा अवेक्ष्य, अपने धर्म का मतलब अपने क्षत्रिय धर्म का विचार करो, न विकम्पितुमर्हसि, अपने क्षत्रिय धर्म का विचार करने के बाद तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, संकोच करने के तुम योग्य नहीं हो। आप भगवान बता रहे डायरेक्टली कि आप चूंकि क्षत्रिय हैं इसलिए क्षत्रिय धर्म का जब आप विचार करेंगे तो आपको इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए कि आपको युद्ध नहीं लड़ना है, क्षत्रिय धर्म के नाते आपको युद्ध लड़ने का आपको कार्य दिया गया है। धर्माधि युद्धाश्रेयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते, धर्म के लिए युद्ध करने के अलावा क्षत्रिय के लिए और कोई बड़ा कार्य नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान उस पॉइंट को ही बता रहे हैं कि अगर तुम धर्म की बात कर रहे हो तो तुम्हारा सबसे पहला धर्म है क्षत्रिय धर्म, और क्षत्रिय धर्म के हिसाब से अगर तुम विचार करोगे तो आपको फिर युद्ध करना ही चाहिए, फिर आपको संकोच की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय धर्म का मतलब ही होता है क्षत्रायते इति क्षत्रिय, क्षत का मतलब जो सफर कर रहे हैं, जो सफरिंग अवस्था में हैं, उन मतलब चोट खाए हुए ऐसे लोगों को त्रायते, उनकी रक्षा करना, जो ऐसे लोगों की रक्षा करते हैं उनको क्षत्रिय बोला जाता है। समाज में हमेशा ऐसे लोगों का वर्ग होता है जो कि क्षत्रिय, जो कि समाज के दुखी लोगों की मदद करते हैं। इनफैक्ट इस थीम के ऊपर ऑलमोस्ट 99% बॉलीवुड मूवीज बनाई जाती हैं, 99 तो नहीं 95-90% तक। एक उसमें प्रोटैगोनिस्ट होता है, एक एंटागोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट हमेशा पाप करता है, लोगों को परेशान करता है, लोगों को मारता है, और फिर प्रोटैगोनिस्ट जो होता है हीरो वो आके उसको मार देता है। तो उसका कॉन्सेप्ट यही है, क्षत्रिय का जो कॉन्सेप्ट है दुखी लोगों की मदद करना। क्षत्रियों को इसीलिए जंगल में अनावश्यक जो कुछ कुछ छोटे छोटे जानवर हैं उनको मारने की कई बार परमिशन, कुछ समय परमिशन दी जाती है जिससे कि वो प्रैक्टिस कर सकें कि युद्ध में किस प्रकार से फाइट करना है। जैसे क्षत्रिय जंगल में जाके शेर को ललकारते हैं, आमने सामने अपनी तलवार से लड़ाई करते हैं प्रैक्टिस के लिए। आज भी जयपुर में क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं, क्योंकि कई बार क्षत्रिय को धर्म को बचाने के लिए हिंसा की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय राजा हमेशा लड़ना चाहते हैं, वो जब धर्म के ऊपर हानि आती है तब उनको युद्ध में सामने आके लड़ाई करना पड़ता है। तो अगर कोई बोलता है कि हमेशा अहिंसा की आवश्यकता है तो व्यक्ति वो कॉन्सेप्ट हमेशा ठीक नहीं है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि अहिंसा एक धर्म है, परंतु अहिंसा परमो धर्म है ये शास्त्र में इस प्रकार से नहीं लिखा है। ये बाद में बुद्ध शास्त्र में लिखा गया, परंतु वैदिक शास्त्र इसको सपोर्ट नहीं करते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा एक धर्म है, परंतु सबसे ऊंचा धर्म भगवत प्रेम, भगवान को समर्पण और भगवान को प्रेम करना, वो सबसे ऊंचा धर्म है। उससे ऊंचा धर्म अहिंसा नहीं है। और क्षत्रियों को इसीलिए सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं किया जाता है। राजनीति में अहिंसा अगर कोई करता है तो पॉलिटिकल चाल हो सकती है, परंतु उससे ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो उस पाप को सही करने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उस पापी को तलवार के दम पे या दंड के दम पे उसको वापस लेके आए। इस प्रकार से एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो शांति स्थापित करे। इस शास्त्र में और भी लिखा रहता है, युद्ध में अगर कोई धार्मिक युद्ध में संघर्ष करते हुए कोई व्यक्ति, कोई राजा मरता है या कोई क्षत्रिय मरता है तो उसको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। इसी तरह से यज्ञ की अग्नि में जो पशु मरते हैं उनको भी उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। अगर ये प्रामाणिक वैदिक तरीके से यज्ञ किया जाता है और क्षत्रिय भी धार्मिक क्षेत्र में अगर युद्ध करता है, धर्म की तरफ से युद्ध करता है, तो उसको उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना या यज्ञ की अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा नहीं माना जाता। यज्ञ में लोगों को बहुत सारा मिसकंसेप्शन होता है कि यज्ञ की अग्नि में, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को मार दिया जाता था। वास्तविकता में यज्ञ में उनका, उनकी प्रमोशन होता है। जैसे कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का कोई टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट में सफल होने के बाद उसका प्रमोशन होता है, क्लास प्रमोशन होता है, कॉर्पोरेट में भी प्रमोशन होता है। उसी तरह से अगर घोड़े को हम मारते हैं और यज्ञ प्रॉपर तरीके से किया गया है तो यज्ञ के मंत्र की शक्ति से और ब्राह्मणों की शुद्धता के कारण उस घोड़े को अगला जन्म मनुष्य योनि मिल जाता था। उस यज्ञ की आहुति से ही घोड़ा का असर उसमें जाता था और मनुष्य बाहर आता था। इस प्रकार से यज्ञों में इतनी शक्ति थी, परंतु कलयुग में वो यज्ञ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कलयुग में ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं बचे हैं और घी और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से क्षत्रिय का ये धर्म है कि वो अधर्म को खात्मा करने के लिए युद्ध करें, क्योंकि क्षत्रियों को भगवान का प्रतिनिधि भी बोला जाता है, भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि क्षत्रियों को बोला जाता है। तो भगवान का जो कार्य है, पवित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश, वो ही कार्य क्षत्रिय भी करते हैं भगवान की एजेंसी के थ्रू। हमारे स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं, स्वधर्म मतलब खुद का धर्म। तो जब तक कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाता तब तक उसका, उसके शरीर के भी कुछ कर्तव्य होते हैं, शरीर के संबंधित कुछ ड्यूटीज होती हैं जो उसको पूरा करनी होती हैं। और जब कोई व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है तो उसका जो स्वधर्म है वो आध्यात्मिक हो जाता है। तो एक तो होता है दैहिक धर्म, मतलब आत्मा का धर्म, उसमें आत्मा को मेंटेन कर, उसमें आत्मा आध्यात्मिक जीवन जीना, आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करना, भक्ति का प्रयास करना, ये आध्यात्मिक धर्म कहलाता है, ये आत्मा का धर्म है, ये मेन धर्म भी बोला जाता है। इसके अलावा एक दूसरा धर्म है शारीरिक धर्म, जो शरीर का धर्म है, शारीरिक स्तर पर जो धर्म होता है उसको बोला जाता है वर्णाश्रम धर्म। शारीरिक स्तर पर हमारा जो धर्म है वर्णाश्रम धर्म है। तो वर्णाश्रम धर्म का मतलब होता है हमें जिस प्रकार का शरीर नेचर के द्वारा दिया गया है उन गुणों के आधार पर मानवीय समाज को डिवाइड करना चार धर्म और चार आश्रमों में। ये कोई भी इस प्रकार से कास्ट के जैसा आधारित नहीं है, परंतु ये सिंपली मनुष्य को जो नेचर मिला है, जो शरीर मिला है, पुरुष स्त्री के जो शरीर मिले हैं, या अलग अलग लोगों का साइकोलॉजिकल नेचर होता है, अलग अलग लोगों के टैलेंट्स भी होते हैं, इस प्रकार के जो चीज़ें लोगों को मिली हैं, टैलेंट, अलग अलग टैलेंट, अलग अलग नेचर, उसके आधार पर उनको सही जगह से एंगेज करना, उसको वर्णाश्रम धर्म बोला जाता है। तो वर्णाश्रम हालांकि शरीर के लिए स्वधर्म का कार्य करता है, परंतु तब भी वर्णाश्रम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करने के लिए। अगर भारत में पहले वैदिक वर्णाश्रम कल्चर था तो लोग इतने अच्छे थे कि आध्यात्मिक जीवन में ऑलमोस्ट सभी लोग आध्यात्मिक जीवन में एंगेज रहते थे, पर जैसे जैसे वो कल्चर का विनाश होता जा रहा है वैसे वैसे लोग अध्यात्म से दूर जाते जा रहे हैं। तो वर्णाश्रम धर्म के आधार पर अगर किसी कार्य क्षेत्र में हम स्वधर्म का पालन करते हैं तो जीवन के सबसे ऊंचे पद को प्राप्त किया जा सकता है। और भगवान अपने दो श्लोकों में, अगले दो श्लोकों में ये चीज़ बताते भी हैं। 32 और 33 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, यद्वक्षया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईद्वसम। भगवान बता रहे हैं यद्वक्षया च उपपन्नम, अपने आप स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अपने आप स्वर्ग लोक के दरवाजे खुल जाते हैं। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईद्वसम, ऐसे क्षत्रिय सुखी हैं जिनको युद्ध के, जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप मिलते हैं। ऐसे क्षत्रिय बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनको धर्म युद्ध करने के अवसर मिलते हैं, क्योंकि धर्म युद्ध करने से क्षत्रिय स्वर्गलोक चले जाते हैं, स्वर्गलोक के द्वार उनको खुल जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि आपको धर्म युद्ध करने का मौका मिला है, परंतु आप उस धर्म युद्ध से हटने का बात कर रहे हैं। ये इस प्रकार से बात करना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे युद्ध का तो क्षत्रिय लोग स्वागत करते हैं, ऐसे युद्ध करने से वो स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं उनके लिए। भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना कर रहे हैं जब वो कहता है कि इस युद्ध में उनको कुछ लाभ नहीं दिख रहा है। अर्जुन ने पहले अध्याय में बोला था कि अगर वो युद्ध करेंगे तो उनको नरक में रहना पड़ेगा, नरके नियतम वासो भवतीत्यनुसुसुमः। अर्जुन ने इस प्रकार से पहले अध्याय में बोला था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो नरक में रहना पड़ेगा। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि युद्ध नहीं करोगे तो नरक में रहना पड़ेगा, युद्ध करोगे तो स्वर्ग में रहना पड़ेगा। तो भगवान अर्जुन ने जो जो पॉइंट्स बताए थे उन सारे पॉइंट्स को सिस्टमेटिकली डिलीट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अर्जुन ने बोला था कि नरक, युद्ध नहीं करने से वो स्वर्ग जाएंगे और युद्ध करने से नरक जाएंगे। भगवान बोल रहे हैं कि युद्ध करोगे तो स्वर्ग जाओगे, युद्ध नहीं करोगे तो नरक जाओगे, क्योंकि युद्ध नहीं करने से आप अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, युद्ध करने से आप अधर्म का विनाश करोगे और अपने धर्म का पालन करोगे, तो इसलिए आप स्वर्ग लोक चले जाओगे। आगे ऐसा लिखा है, अर्जुन ने कहा था कि नरक में उनको शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन के द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान के कारण थे। वो अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर अहिंसक बनना मूर्ख का दर्शन है। देखिए क्लियरली लिखा है कि कोई क्षत्रिय अगर युद्ध भूमि में खड़े होकर बोलता है कि मैं अहिंसा करूंगा तो वो क्षत्रिय नहीं, मूर्ख है वो। पराशर स्मृति में पराशर जी ने लिखा भी है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रदंडयन निर्जित्य स्पर सैन्यादि क्षिति धर्मेण पालयेत। क्षत्रिय का ये लक्षण है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण, प्रजा की रक्षा के लिए शस्त्र पाणी प्रदंडयन, प्रजा की रक्षा के लिए क्षत्रिय शस्त्र को धारण करते हैं और लोगों को जो दुष्ट हैं उनको दंड देते हैं। निर्जितस्य पर सैन्यादि, उनको दूसरी सेना को जीतना पड़ता है। क्षिति धर्मेण पालकः, जो दुखी लोग हैं उनके, उनको बचाने के, धर्म को पालन करने के लिए, तो प्रजा की रक्षा के लिए उनको शस्त्र उठा के दंड देना पड़ता है, दूसरी सेना को हराना पड़ता है, जिससे कि धर्म के आधार पर वो जी सकें और दुखी लोगों का दर्द खत्म कर सकें। तो अगर इन सभी को सोचें तो अर्जुन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि अर्जुन युद्ध से दूर जाएं, युद्ध से विमुख हों। परंतु अगर अर्जुन शत्रुओं से जीत जाते हैं तो अर्जुन इस संसार में रहेंगे और राज्य भोग करेंगे, परंतु अगर युद्ध भूमि में अर्जुन मर जाते हैं तो स्वर्ग को जाएंगे, जिसके रास्ते उनके उनके लिए ऑलरेडी खुले हुए हैं। तो इसलिए युद्ध करने से अर्जुन को हमेशा फायदा होने वाला है। अगर मृत्यु होगी तो भी ठीक है, अगर जीवित रहेंगे तो भी बहुत अच्छा है। और अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो और क्या क्या उनके साथ लॉस हो सकता है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापं अवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, अगर तुम अपना जो तुम्हारा धर्म है उसको पालन करने के लिए अगर आप संग्राम नहीं करोगे, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, तब तुम अपने धर्म का भी नाश करोगे, अपनी कीर्ति यश का भी नाश करोगे और पाप को प्राप्त करोगे। तो भगवान बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं, अर्जुन ने बोला था कि धर्म नरक चले जाएंगे, परंतु भगवान बोल रहे हैं कि अगर नहीं युद्ध करोगे तो अपना धर्म चला जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा यश चला जाएगा और तुम पाप को भी प्राप्त करोगे। पाप किस लिए प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम अपना कर्तव्य पूरा नहीं करोगे, इसलिए तुम पाप को प्राप्त करोगे। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके उन्हें हरा कर अर्जुन ने प्रसन्न किया था। अर्जुन जब वनवास के समय पे एक बार वो शंकर जी से, शंकर जी उनसे उनको टेस्ट करने के लिए आए थे, तो उस समय शंकर जी से बहुत वीरता से युद्ध किया था शिव, और शंकर जी ने प्रसन्न होकर उनको पाशुपात अस्त्र भी दिया था। अर्जुन को सभी लोग जानते थे, सभी जानते थे कि अर्जुन संसार के सबसे बड़े योद्धा हैं। अर्जुन को उनके गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने भी उनको आशीर्वाद दिया था, उनको एक विशेष अस्त्र दिया था जिसके द्वारा वो अपने गुरु का भी विनाश कर सकते थे, इतने ज़्यादा प्रसन्न थे उनके गुरु। तो अर्जुन प्रैक्टिकली इस संसार में सबसे महान धनुर्धर थे। राज स्वर्ग के राजा इंद्र ने उनको एक बार ऐसे राक्षसों को मारने भेजा था जिनको इंद्र भी नहीं मार पा रहे थे, तो अर्जुन ने उन राक्षसों को मारा था। निवात कवच, निवात कवच उन राक्षसों का नाम है, अर्जुन ने उनको मारा था। परंतु भगवान बोल रहे कि तुम्हारी इतना ज़्यादा यश है, इतने सारे लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, परंतु अगर अभी तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। वो क्या बोलेंगे कि अर्जुन डर गया, अर्जुन ने डर के युद्ध क्षेत्र छोड़ दिया। तो इस प्रकार से अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की जो तुम्हारी ख्याति है वो भी खत्म हो जाएगी, और तुम पाप को भी प्राप्त करोगे और अपने धर्म का भी विनाश करोगे। तो इसके बाद अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादति विच्यते। भगवान बता रहे हैं लास्ट में कि सम्मानित व्यक्ति के लिए तो मरना अच्छा है। अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है कि तुम्हें युद्ध नहीं करना है, और तो मैं आपको सलाह दूंगा कि युद्ध करो, हार जाओ, मर जाओ। युद्ध करके मरोगे तो आप स्वर्ग चले जाओगे, और अगर आप भाग जाओगे तो आपका सम्मान यश सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़ के है। अभी अर्जुन के मित्र और गुरु के रूप में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से विमुख ना होने का अंतिम निर्णय सुना रहे हैं। वे कहते हैं, अर्जुन यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पहले ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। यद्यपि अर्जुन की इतनी ख्याति है, परंतु भगवान बता रहे हैं कि अगर युद्ध चालू होने के पहले ही आप युद्ध छोड़ देते हो तो लोग आपके ये नहीं बोलेंगे कि आप बहुत महान हो, लोग बोलेंगे आप कायर हो, आपको युद्ध से डर गए। और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहे हो किंतु तुम युद्ध भूमि से भाग कर अपनी जान बचा लो, तो मैं सलाह दूंगा कि युद्ध में मर जाओ तो अच्छा है, क्योंकि मरने से कम से कम तुम्हें ये फायदा होगा कि तुम स्वर्ग लोक में जाके अच्छे से जीवन जी पाओगे। क्योंकि युद्ध छोड़ के अगर तुम भागोगे तो लोग तुम्हें हर जगह, जहाँ भी तुम्हें कोई देखेगा, तुमसे यही बोलेगा कि तुम डर गए हो, और कोई सम्माननीय व्यक्ति के लिए उसका जो अपमान है उसकी मृत्यु से भी खराब है। तो अगर तुम उस प्रकार का अपमान जीना चाहते हो तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम मृत्यु को ही प्राप्त कर लो इस प्रकार के अपमान से जीने की बजाय। इसलिए अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वो संग्राम से पलायन ना करें, युद्ध में ही मर जाएं अगर उनको इस प्रकार से लगता है तो। फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया कि महान महान योद्धा जो आपको लग रहा है कि आपको जो सम्मान देते हैं, महान योद्धा जो आपको सम्मान देते हैं वो क्या सोचेंगे, भया द्रणाद उपरताम, कि आपने भय के द्वारा युद्ध भूमि छोड़ दी है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, पिछले श्लोक में ही डिस्कस किया। इसका तात्पर्य भी भगवान बताते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ दी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारी प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तो अर्जुन जो जो प्रकार जो जो अर्जुन ने आर्ग्यूमेंट रखे थे, सारे आर्ग्यूमेंट भगवान पूरे लॉजिक और रीजनिंग के द्वारा खारिज कर रहे हैं और शुद्ध धर्म को स्थापित कर रहे हैं। तो कल हम 36 नंबर से स्टार्ट करेंगे। कल मीन्स नेक्स्ट क्लास जब होगी, 36 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, और बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक आने वाले हैं। अभी केवल 10 श्लोक बाकी हैं, 46 श्लोक हैं इसमें, नो 46 नहीं, इसमें एक्चुअली इसके बाद लंबा सेक्शन बाकी है, दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं टोटल। और टेक्स्ट नंबर 39 के बाद बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आने वाले हैं, 39 के बाद 40, 41, 42, 43, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कितना करेंगे। और आई होप ये डिस्कशन आपको ठीक लग रहा होगा, भगवद गीता का डिस्कशन, क्योंकि अगर बहुत अच्छा होगा कि अगर आप भगवद गीता को अपने साथ में लेके बैठें, भगवद गीता यथा रूप अगर आपके पास में है तो भगवद गीता को साथ में लेके बैठेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। श्लोक नंबर हम डिस्कस करके फिर जब मैं पढ़ रहा हूँ तो आप भी पुस्तक में से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट मंडे को हम इसी टाइम पर फिर से डिस्कस करेंगे, श्लोक संख्या 36 से प्रारंभ करेंगे। अपनी अपनी पुस्तक भगवद्गीता यथा रूप साथ में लेके आइएगा। नेक्स्ट मंडे को हम फिर से मिलते हैं। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भगवद्गीता यथा रूप की जय।